ये है 12 नंबर के रजिस्टर में 109 पेज 22486 का प्रातःकाल रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली सभी बच्चों ने ये गीत सुना बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना जीते जी गले का हार बनने के लिए अर्थात मूल वतन में जाकर के बाबा के घर में रहने के लिए ये गीत सुना वो शिव बाबा का घर है ना जिसमें सभी शालिग्राम रहते हैं बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वो ही बाबा आए हुए वो ही बाबा कौन से जो जो पहले घर ले गए थे और घर ले जा करके कहाँ भेजा था सुखधाम में भेजा था कहते हैं अभी तुमको नंगा बनना है नंगा बनना तो खराब बात होती है नंगा क्यों बनना है कहते हैं ना बड़ा नंगा आदमी है तो नंगा का मतलब देहभान को त्यागना अर्थात बाप के सामने पोता मिल देते समय जो देहभान आता है वो देहभान निकाल के एक तरफ रखना जितने भी पाप हैं जो भी बातें खाती हैं दिल को वो सब बातें बाप के सामने रख देना अर्थात निर्वस्त्र हो जाना देह अभिमान रूपी वस्त्र को एक ओर हटा देना माना बाप और हम बच्चों के बीच कोई आट न रहे इस तरह नंगे होने की बात का मतलब है सच्चा पोता मिल जाए माना निराकार स्थिति धारण कर इस दुनिया का जो देहभान है मान मर्तबा है वो हटाए दें तो तुम बच्चों को नंगा बनना है बनना है इसका मतलब अभी अभी बने नहीं हो क्योंकि अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई पोतों में एक है तो एक तो जरूर पहले नंगा बनता है दुनिया में उसके नंगे पने के चित्र भी है दुनिया भी लोक लाज की कोई परवाह उसको नहीं है बाकी बच्चों को भी नंगा बनना है ऐसे नहीं कि बच्चे बाप समान नहीं बनेंगे अर्थात देह के भानों को भूलना है ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी तो जो दुनिया भस्म होने वाली है उसकी लोक लाज रखनी है या लोक लाज की भी परवाह नहीं करनी है जो दुनिया सामने खड़ी है नई दुनिया उसकी लोक लाज मर्यादा रखनी है یا بسم ہونے والی دنیا کی لوکلاج میں مرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جو نئی دنیا آنے والی ہے اس کی مان مریادہ رکھنی ہے. وہ باپ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, اور جو پرانی دنیا ہے وہ تو بسم ہونے والی ہے. ہم براہمنوں کی دنیا میں پرانی دنیا بھی ہے, تو نئی دنیا بھی ہم سامنے کھڑی ہے. پرانا کلاس کراپ کیا, پاس کیا, نئے کلاس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو نیا سنگٹھن من برہمنوں کی نئی دنیا. اس شریر کو تو چھوڑنا ہے, ارتھات سب کچھ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ دنیا ہی ختم ہونی ہے. تو اب چلنا ہے واپس گھر. تبھی بچوں کو ابھی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ گھر جانے کے لیے بہت دھکے کھائے. پرنتو اتنے دھکے کھانے کے باوجود بھی راستہ تو ملا ہی نہیں, اور یہ بھکتی مار کا چہچٹا دیکھ کر کے منشی پھنس مرتے ہیں. چہچٹا من بھکتی مار کا پمپ اینڈ شو, پمپ اینڈ شو دیکھا اور اسی میں پھنس مرتے ہیں, کیونکہ یہ ہے بھکتی مار کی دوپڑ مانا دلدل. جتنا اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں اتنا ہی اور پھنستے جاتے ہیں. جس میں منشی ماتر گلے تک دوپڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ بچے کہتے ہیں بابا ہم پرانی دنیا, اور اس پرانے شریر کو بھولتے ہیں. اب آپ کے ساتھ اثر ہی نہیں بن کر کے گھر چلے. سب کی بدھی میں ہے پرم پتا پرماتما پرم دھام سے آئے ہم کو لے جانے کے لیے. صرف کہتے ہیں تم پوتر بن کر کے ہم کو یاد کرو. جیتے جی مرنا ہے, جیتے جی مرنا. ایک ہوتا ہے شریر سے مرنا, وہ تو باپ ہم کو نہیں سکھاتے. ایسے نہیں کہ مما بابا نے شریر چھوڑ دیا تو ہم بھی شریر چھوڑ کر کے سوکشم بدن واسی بنے, ایسے فرشتہ بنے. نہیں, بابا ہم کو مرلیوں میں یہ لکشیہ نہیں دیتے کہ یہ شریر چھوڑ دو. ہماری پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ پڑھائی ہم یہاں پڑھیں اور مرتبہ اگلے جنم میں پائیں. یہ تو پڑھائی ہے نر سے نارائن بننے کی. نر سے ڈائریکٹ نارائن بننا ہے اسی جنم میں. ایسے نہیں کہ نر سے پرنس بننا ہے اگلے جنم میں پھر نارائن بننا ہے. نر سے پرنس بننے کا تو گائن ہی نہیں ہے. نر سے نارائن ڈائریکٹ بننے کا گائن ہے. تو بنیں گے کب؟ جب کہ اس دنیا سے, اس شریر سے, اس دیہ کے سمبندھوں سے, چاہے وہ لوکک لوہے کے سمبندھ ہوں, چاہے الوکک براہمنوں کی دنیا کے سونے کے سمبندھ ہوں, سونے کی زنجیریں ہوں, دونوں سے مرنا ہے. دونوں سے لوگوں کو تیاگ کرنا ہے. یہ جیتے جی مرنا ہے. جیتے جی مرنا ارتھات باپ کے پورا پورا ڈائریکشن پر چلنا. تم جانتے ہو وہاں گھر میں آتمائیں رہتی ہیں. کیا باپ کے گھر میں کون رہ سکیں گے؟ دیوان والے رہ سکیں گے؟ دیوان والے نہیں رہ سکیں. اس لیے مرلی میں پہلے ہی بتا دیا باپ کے پاس وہی رہ سکیں گے جو پورے مرے ہوئے ہوں گے. کیسے؟ دیہ ابھیمان سے مرے ہوئے ہوں گے. اگر देह अभिमान होगा और बाप के पास भी रहेंगे तो पाप का 100 गुना बोझा चढ़ता जाएगा, 1000 गुना बोझा चढ़ता जाएगा और एक दिन बाप खड़े होंगे क्योंकि पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। तो फायदा हुआ घाटा हुआ बाप के पास रहने से? हैं? घाटा हो गया। तो क्या घाटा लेने के लिए बाप के पास रहते हैं? हैं? नहीं, घाटा भी है कई गुना तो प्राप्ति भी है कई गुना। सहज से सहज होकर के चलेंगे, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चा होकर के चलेंगे, सही सही पोता मिल दे करके चलेंगे तो सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं हो सकता। तो बाप के पास वो रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए हों, पूरा मरा हुआ होना अर्थात देह भान खलास, यानी बाप के पास रह करके फिर देह भान दिखाना, ये बात ठीक नहीं। लेकिन ये तो परमधाम की बात बताई बाबा ने, इस दुनिया की तो बात ही नहीं बताई। नहीं, वाणी में पहले भी बता दिया कि तुम बच्चे परमधाम को इसी सृष्टि पर उतार लेंगे, यानी इसी दुनिया में 3 धाम तैयार होने, शांति धाम या तपस्या भूमि। शांति धाम कहो, ब्रज मधुवन कहो, जहाँ आत्माएं सब आत्मिक स्टेज में रही पड़ी होंगी, कोई भी देहवान में रहने वाला नहीं होगा। ऐसा जो प्रैक्टिकल साकार सृष्टि पर मूल वतन का संगठन बनेगा वही बाप का घर होगा प्रैक्टिकल में, लेकिन उसमें देहवान वाले नहीं टिक सकेंगे और वहां से फिर ट्रांसफर किए जाएंगे कहां? सुखधाम। सुखधाम कहां होगा? सुखधाम होगा जमुना के कंठे पर दिल्ली में, दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है फिर दिल्ली परिस्थान भी बनती है। परिस्थान अर्थात परियों का स्थान, यहाँ ज्ञान के पंख वाली, योग के पंख वाली परियां ऊंची स्टेज में उड़ती रहती। ऐसा भी संगठन होगा जो दुनिया वालों की दृष्टि में ऊंचे से ऊंचा वंडर कहा जाएगा। मनुष्यों के बनाए हुए वंडर वो देखने के लिए लोग जैसे जाते हैं लालायित होकर, लेकिन वो तो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर, जब विनाश होगा वो वंडर से सब खलास हो जाए। और जो बाप का बनाया हुआ वंडर है सुखधाम, वो सारी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो शांति धाम और सुखधाम, जहां हम बच्चों को रहना है तो आत्मिक स्टेज में रहने वाली जो आत्माएं हैं वो घर में रह सकती है। सो भी आत्मा तो बिंदी है, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, बिंदी बना बहुत छोटी, बाप के घर में छोटा बन करके रह सकते हैं। छोटा बच्चा अगर बड़ापन आया तो बड़ापन तो दुनिया भी हिसाब किताब है, बाप के सामने बड़ापन नहीं चलेगा। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, जैसे आत्मा छोटी बिंदी है परमात्मा भी छोटी बिंदी है। परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो छोटा बन करके आता है या बड़ा बन करके आता है? बहुत छोटा साधारण बन के आता है। तो बच्चों को भी कैसा बनना पड़े? बहुत छोटी बिंदी बनना पड़े। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। साकार शरीर से न भी पहुंच पाए, साकार शरीर इस दुनिया की कयामत के बर्पा होने पर भले खत्म हो जाए, लेकिन हर आत्मा की बुद्धि में मन में वो शांति धाम का नजारा बसा हुआ होगा, जहां प्रैक्टिकल पार्ट बाप का चल रहा होगा, तो सारी दुनिया की नजर उस स्टेज पर लगी हुई होगी। तो सबको उस देश में जाना है, शरीर से नहीं तो मन बुद्धि से जाना है, मन शरीर छोड़ करके भी जाना है। आत्माएं उस महत्व की कितनी जगह लेती है, महत्व में शरीर तो देखो कितना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए, बहुत थोड़ी सी। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, छोटी जगह कौन लेंगे और बड़ी जगह कौन लेंगे है? जो गरीब होते हैं वो छोटी छोटी झोपड़ियों में भी रहने लग पड़ते हैं, और बड़े आदमी होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, बड़ा स्थान चाहिए। जिस दुनिया भी मान मर्तबा लगा पड़ा है, बहुत देवान चढ़ा हुआ पड़ा है। एक कहावत है कि अगर दिल में जगह है तो स्थान बंद थोड़ा भी हो, लेकिन दिल बड़ा है तो स्थान छोटा भी छोटा नहीं है, बड़ा हो जाता है। तो आत्माएं कितनी जगह लेंगी, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए कितनी जगह चाहिए है? बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए। कितनी स्पेस बताई होगी है? ना, वो तो एक आत्मा के लिए बताया, और वो शास्त्रों में बताया अंगुष्ठ मिसल। शास्त्रों में जो बातें हैं वो है तो यही की, लेकिन यहाँ तो सब आत्माओं की बात है। 500 करोड़ सब आत्माओं को रहने के लिए कितना स्थान चाहिए, वो बात यहाँ पर बताइए। कितनी स्पेस लेंगे, वो तो चित्र बना दिया है तीन लोग का, वहां दिखाया कि सारा झाड़ का झाड़ आत्माओं का एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है। मुरली में बाबा ने बोला हुआ है ज्यादा से ज्यादा एक फरलांग की स्थान चाहिए 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को इकट्ठा होने के लिए है? एक माइल में 8 फरलांग होते, तो एक फरलांग का दायरा चाहिए सिर्फ। ये क्या बात हुई, ये एक फरलांग का दायरा क्या कैसे हो सकता है? जरूर बीज रूप आत्माओं में सारी दुनिया समाई हुई। क्या जो बीज हैं सृष्टि के, एक एक बीज में जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, जैसे एक एक सितारे में दुनिया दिखाई गई है, ऐसे जो बीज रूप में है उन एक एक बीज रूप आत्मा में सारी दुनिया जैसे समाई हुई रहती, तो वो केंद्र बिंदु हो जाते हैं, वो बीज, वो माला के मणके जो सब धर्मों को अपने में समेट लेते, हर धर्म की आत्मा को अपने में समेटे हुए रहते। जैसे कोई भी बीज का वृक्ष होता है तो वृक्ष बड़ा हो जाता है और बीज छोटा होता है, लेकिन बीज देख करके ही समझा जाता है कि इसमें इतना बड़ा सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत थोड़ी स्पेस होगी, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए, हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का अभी सौभाग्य मिलता है। बाप ही बताते हैं कि तुम नंगे आए थे, फिर अब शरीर धारण करके तुमने पार्ट बजाए। ऐसे नहीं कि पहले से ही तुम्हारा ये शरीर था, शरीर रूपी दुम्ब पहले से नहीं था, अब फिर जीते जी तुमको मरना है, सबको भूलना है, क्योंकि बाप आकर तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़, मां एकम याद करो। तो देह के जो सब संबंध छोड़े जाएंगे और मां एकम याद किया जाएगा, तो उसमें देह का संबंध नहीं होगा क्या? सब संबंध छोड़ दिए देह के और मुझे एक को याद करो, तो मुझे एक को याद करो क्या मतलब? एक बिंदु को याद करो है? जो कहने वाला कह रहा है मां एकम याद करो, तो वो देह में आकर के कह रहा है या बिना देह के कह रहा है? देह में आकर के कहता है कि मां एकम याद करो, तू जम याद न करो, तो देह का संबंध नहीं होगा उसमें। अगर देह का संबंध नहीं होगा तो फिर डायरेक्शन क्यों दिया गया व्यक्त वाणी में कि सर्व संबंध से मेरे को याद करो? अगर एक संबंध की भी रचना रह जाएगी तो उस रचना के लिए अगले जन्मों में तरसते रहेंगे, वो सुख फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सर्व संबंधों से मेरे को याद करो। तो ऐसे पहचान वाली आत्माएं जो सर्व संबंध अनेक आत्माओं से तोड़े और एक आत्मा से जोड़े, तो वो एक आत्मा जिससे संबंध जोड़े जाएंगे वो सर्व संबंध फलदायी कहां होंगे? परमधाम में, या ऐसी साकार शक्ति पर फलदायी होंगे, क्योंकि फाउंडेशन यहां डाला जाता है संगम युग में। और प्राप्ति कहां होती है? प्राप्ति होगी सतयुग त्रेता में, 21 जन्मों की तो डायरेक्ट प्राप्ति होती है, और फिर 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति का हिसाब किताब बनता है। तो एक बाप जिसके साथ संबंध जोड़ने की बात आती है वो साक्षी होने वाला बाप नहीं है, जरूर वो 84 जन्म साथी होने वाला बाप है, और वो है मनुष्य सृष्टि का पिता, प्रजापिता। लेकिन वो प्रजापिता भी तब संगम युग में साबित होता है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश होता है। तो इस आधार पर कहा कि अनेक आत्माओं से संबंध को तोड़ो और एक बाप से संबंध जोड़ो, क्योंकि संबंध साकार में ही होता है। सम माने समान, सम माने संपूर्ण, और बंधन माने बंधन। आत्मा बंधा है मान हो जाए, अनेक जन्मों के संबंध में, क्योंकि संबंध जहां जुड़ते हैं वहां अनेक प्रकार की एक्टिविटी होती है, अनेक प्रकार के संबंधों की रचना होती है। तो बताया कि और सबको भूल जाना है, योग में रहने से पाप नाश हो जावेंगे, तो मां में कम याद हो, सभी का बाप तो एक है। तुम प्रजापिता के कितने मुखवंशावली बच्चे हो, मुखवंशावली वंशावली कहेंगे। शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है, वो आत्माओं का पिता है। आत्माएं तब क्रिएट नहीं की जाती, आत्माएं तो अनादि है ही है। वो शिव ज्योति बिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसके थ्रू प्रजा पिता माने 500 करोड़ की प्रजा का पिता बनता है, तब मुखवंशावली पैदा होती। मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान के आधार पर आकर्षित होकर के जो आत्मा बाप की बनती है वो मुखवंशावली कही जाती। बाकी देह के आधार पर आकर्षित होकर के ज्ञान में चलने वाले वो मुखवंशावली नहीं है, वो कौन है? कुखवंशावली। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे कुखवंशावली और मुखवंशावली तैयार हुए पड़े। तो मुखवंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पीते रहते, और कुखवंशावली क्या करेंगे? जो कुखवंशावली बच्चे होंगे वो ज्ञान नहीं पिएंगे, यानी ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं करने वाले होंगे। वो क्या करेंगे? वो देह अभिमान का रस पिएंगे। तो देह अभिमान का रस पीने वाले उनके जन्मों में प्राप्ति में कटौती हो जाएगी, देह अभिमानी की दुनिया वालों के बीच पैदा होना पड़ेगा। 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, जो आज से ही निर्वस्त्र हो जाती है, नंगी हो जाती है, बाप समान स्टेज को प्राप्त कर जाती है, उनके साथ उस फर्स्ट गार्डन में जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी वैसी स्टेज ही नहीं बन सकेगी। तो तुम मुखवंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पीते रहते। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, ये तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। लव कब हो? जब उनके नाम को जाने, क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़े हैं। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, काम के आधार पर नाम है, जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे नाम पड़े। तो सबसे जास्ती नाम किसके पड़े? जो परमात्मा पार्ट है उसके सबसे जास्ती नाम पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा पार्ट की महिमा सबसे जास्ती है। अनेक नाम है, बाकी वो नाम साकार शरीर में आने के बाद पड़ते हैं या साकार शरीर में आने से पहले? आने के बाद पड़ते हैं अनेक नाम। साकार शरीर में आने से पहले तो सिर्फ एक नाम है, शिव ज्योति बिंदु। वो मेरी बिंदी का ही नाम है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो अनेक प्रकार की जो एक्ट हुई है, अनेक प्रकार के जो कर्म किए हैं, कर्तव्य किए हैं, जिन कर्तव्यों को दुनिया याद करती है, उनके आधार पर नाम पड़े। तो उसके नाम को जानना पड़े कर्तव्य के आधार पर, रूप को भी जानना पड़े। रूप क्या है? अरे रूप तो बता दिया ज्योति बिंदु, ये तो कोई रूप नहीं हुआ। ज्योति बिंदु तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का रूप है, फिर विशेष महिमा क्या हुई? स्पेशलिटी क्या हुई? विशेष पहचान कैसे होगी कि ये बिंदु परमात्मा है और ये बिंदु आत्मा है? किस आधार पर पहचान होगी? पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते, ऐसा ज्ञान, ऐसा विचित्र ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई मनुष्य मात्र सुनाई नहीं सकता, कोई ब्रह्मा कुमार कुमार भी सुनाई नहीं सकता। तो ऐसा ज्ञान विचित्र ज्ञान सुनाते, क्योंकि वो है ही विचित्र। शरीर में रहते हुए भी विचित्र पार्ट बजाने वाला है। इसलिए बताया कि उनके नाम और रूप को भूलने के कारण किसका भी इतना लव नहीं रहता है। तो उस विशेष नाम को भी पहचानना पड़े, विशेष विशेष नाम के आधार पर काम करने वाले को, और उसका जो पेक्यूलियर विशेष रूप है, जिस रूप के चित्र संसार में आज तक भी मूर्तियां बनी हुई है यादगार, और मूर्तियां भी बनती, क्योंकि और भी धर्म पिताए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह, लेकिन वो हद के धर्म पिताए, हद की जनरेशन उनको याद करती है, लेकिन गॉडफादर को सारी दुनिया याद करती है। तो जिस गॉडफादर के रूप को सारी दुनिया याद करती है, उस निराकारी स्टेज में सुनने वाले को, वो रूप कौन सा है? ऐसे तो सभी धर्म पिता निराकारी स्टेज में दिखाए गए, क्योंकि पिता माना ही बीज। चाहे क्राइस्ट का चित्र देख लीजिए, चाहे बुद्ध का चित्र देखो, गुरु नानक का चित्र देखो, चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज देखने में आती। दृष्टि जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है, ऐसा स्वरूप देखने में आता है प्रत्यक्ष। तो उस निराकारी स्टेज में जो लास्ट में पार्ट बजा करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा, तो ऐसा स्वरूप सारे संसार में पूजनीय रूप बन जाता है, जिसकी चित्र और मूर्तियां विदेशों में भी खुदाइयों में मिल रही है। जैनियों लाल पत्थर का लिंग था और उसमें बीच में हीरा बिंदु की यादगार जड़ी हुई थी, तो हीरा हो गया परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की यादगार, और लिंग हो गया वो साकार शरीर, जिस साकार शरीर में वो ज्योति बिंदु प्रवेश करके पाठ बजाता है। कौन सा पाठ बजाता है? ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करने का, सारे संसार में आलोकित होने का पाठ बजाता है। कोई स्थूल प्रकाश की बात नहीं है। ऐसे नहीं समझना कि वो प्लास्टिक का कास्केट बनाए दिया शिवलिंग, तो कोई लाल लाइट का गोला है, कोई स्थूल लाल लाइट थोड़ी है। लाइट माना ज्ञान की लाइट, वो ज्ञान की लाइट भरी पड़ी। आत्माओं को अंगूठाकार दिखाते हैं और परमात्मा को लिंगाकार दिखाते हैं, बड़ा रूप दे दिया है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि आत्मा का प्रकाश थोड़ा होता है, आत्मा जन्मण के चक्र में आती है, इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का सागर नहीं। और परमात्मा, परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, तो उस ज्ञान के सागर को कैसे दिखाया जाए? इसलिए फिर उसका बड़ा रूप दिखाया शिवलिंग। वो बड़ा रूप भी बिना साकार शरीर के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता संसार में, क्योंकि उस ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए भी मुख चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए जगन्नाथ और श्रीनाथ के मंदिर में लिंगाकार लकड़ी रखी हुई है, उस लिंगाकार लकड़ी में नाक आंख कान बनाए हुए, वास्तव में वो यादगार शरीर की है। तो वो लिंग जो निराकार का प्रतीक है, लेकिन वो निराकार साकार में आकर के निराकारी स्टेज को धारण करता है, उसका नाम भी है तो उसका रूप भी है, उसका कोई देश भी है विशेष, जिस देश विशेष में आकर के वो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए यादगार बनी हुई है। भगवान के जन्म की यादगार कहाँ बनी हुई है? विदेशों में या भारत देश में? कहते हैं भारत में ही भगवान आते, और भारत में भी विशेष कहाँ है? हाँ, वाणी में तो बताया मगध देश में आते हैं। मगध देश का उन्होंने अर्थ लगा दिया, सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद कोई मगध देश नहीं कहा जाता, गंगा यमुना के जो बीच का द्वाबा है उसे मगध कहा जाता है। मगध देश जहाँ के मनुष्य मगरमच्छों सदृश हैं, जैसे मगरमच्छ होता है छोटी मोटी मछलियों को खा जाता है, हप कर जाता है, ऐसे ही सारे भारत के अंदर कोई ऐसा भी प्रदेश है जो सारे भारत को हप किए बैठा है और हप कर लेगा, और नाम भी रखा हुआ फर्र खाबाद, फर्र माना बहुत जल्दी से, खा माना खा लेगा, और बाद माने बाद में, अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो सारी दुनिया को फर्र से खा लेगा, अपने गाल में रख लेगा, काल के गाल। तो वो फर्रुखाबाद तो बाबा ने नाम लिया हुआ है वाणियों में कई जगह, कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। क्यों? इतनी बड़ी दुनिया उसमें सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट रह गया जहाँ के लोग मालिक को मानते हैं, बाकी सारी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के लोग उस मालिक को मानते हो। जरूर कोई इसमें विशेषता है। क्या विशेषता है? जो व्यक्ति जहाँ का रहने वाला होता है, और वहाँ का रहने वाला व्यक्ति अगर कोई ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, संसार के बीच चमकने वाली सीट पर पहुंच जाए, तो वहाँ जो वहाँ का रहने वाला पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जहाँ का वो व्यक्ति है, वो लोग उसको जितना मान्यता देंगे, उन लोगों को जितना उसका फकुर होगा, दूसरी आत्माओं को उतना फकुर नहीं होगा। अब हमारी तो कोई हद की बात नहीं है कि शरीर से रहने वाले ही फर्रुखाबादी हैं। शरीर से जो मधुबन में रहते हैं वही मधुबनवासी हैं, या मन बुद्धि से मधुबन में रहे पड़े हैं वो मधुबनवासी है? मन बुद्धि से वास्तव में जो मधुबन में रहे पड़े हैं वही वास्तव में मधुबनवासी। शरीर रहा हुआ है मधुबन में और बुद्धि भटक रही है बाहर की दुनिया में, तो वास्तव में वो मधुबनवासी नहीं है। तो यहाँ फर्रुखाबादी भी ऐसे ही है। शरीर से जो फर्रुखाबाद में रहे पड़े हैं वो कोई फर्रुखाबादी नहीं है, वास्तव में मन बुद्धि के आधार पर जो फर्रुखाबाद में रहे पड़े, बुद्धि वही लटकी हुई है जहाँ बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार होता है, जिसका नाम बाप दादा ने दिया है मिनी मधुबन। तुम बच्चे मिनी मधुबन बना देंगे तो बाप दादा भी आवेंगे, तो जरूर ऐसा मिनी मधुबन कहीं तैयार होना है जहाँ बाप दादा को भी आना पड़े बच्चों से मिलन मनाने के लिए। तो जहाँ बाप दादा होंगे वहां बच्चों की बुद्धि क्यों नहीं जाएगी? बच्चे वहां बुद्धि से निवास क्यों नहीं करेंगे? जो बच्चे होंगे वही निवास करेंगे। परमात्मा बाप की संतान जो सच्ची आत्माएं होंगे, यानी निराकारी स्टेज वाले जो होंगे, नंगी आत्मा बनने वाले जो होंगे, देह अभिमान को त्याग करने वाले जो होंगे, वो बच्चे मन बुद्धि से जरूर वही बात करेंगे। उनकी बुद्धि में ये दुनिया टिकेगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। उनकी बुद्धि को शकुन ही तब आएगा जब उनकी बुद्धि वहां पहुंच जाएगी, नहीं तो आराम में महसूस नहीं करेगी बुद्धि, बेआरामी होने लग पड़ेगी। तो ऐसे जो फर्रुखाबादी बच्चे हैं उनको विश्व का मालिक मान्यता की स्टेज में याद आएगा, दुनिया के मुकाबले सबसे जाती उनकी बुद्धि में उसकी मान्यता होगी। मान्यता होगी तो वो ही बच्चे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता हैं दुनिया के हिसाब से, या बड़े बड़े साहूकार हैं दुनिया के हिसाब से, या विदेशी लोग हैं दुनिया के हिसाब से, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं, जो बाप के बच्चे हैं 108 की लिस्ट में आने वाले हैं, जिसे 108 की माला को सारी दुनिया, हर धर्म के मनुष्य मात्र उस माला को सिमरण करते हैं, आज तक भी याद करते हैं, तो ऐसी 108 बीज रूप आत्माओं वाली उस माला का जो संगठन है, वो संगठन को इस स्थान पर तैयार होता है। जो संगठन सारी दुनिया को, माना ब्राह्मणों की दुनिया को, जट से अपने कंट्रोल में ले लेता है और राजधानी तैयार हो जाती, तो बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्षता बाद में होगी। पहले कौन सी दुनिया में प्रत्यक्षता होनी? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता हो। ब्राह्मणों की दुनिया में जब एक तरफ जय जयकार होती है, बाप की प्रत्यक्षता होती है, राजधानी का संगठन दिखाई पड़ता है, माला का संगठन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आता है, यानी ईश्वरीय सरकार तैयार होती है, तो जो पुराना संगठन है वो डोलने लग जाता है, हाहाकार होने लग पड़ती है। तो एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। तो लव किसका रहता है बाप में? जिनको स्मृति रहती है बाप के नाम की, बाप के रूप की, नाम रूप की कोई सामान्य स्मृति नहीं। सामान्य स्मृति की ये हो गई कि वो शिव है, उसका रूप ज्योति बिंदु है। नहीं, वो रूप ज्योति बिंदु भी आखिर किस स्वरूप के द्वारा संसार में विश्व का मालिक बनकर के प्रत्यक्ष होता है? यह प्रत्यक्षता करने का निमित्त बनता है। क्यों? क्योंकि शिव ज्योति बिंदु जो आत्मा है वो विश्व का मालिक नहीं बनती, बल्कि वो जिसमें प्रवेश करती है वो साकार रूपधारी ही विश्व का मालिक बनता है। तो बताया कि नाम को, रूप को, देश को और काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का लव नहीं। अगर देश का पक्का पता चल जाए कि किस कोने में वो बाप पार्ट बजाए रहा है तो लग भी जाएगा, लेकिन पता नहीं है तो लव कैसे जाएगा? माँ बच्चे को याद कर रही है और माँ को पता ही नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है, तो किस स्थान पर याद करे? कोई को भी याद किया जाता है तो जिसको याद किया जाता है उसका स्थान भी जरूर याद आता है। तो ऐसे ही भगवान जिस नाम से, जिस रूप से, जिस देश से और जिस काल विशेष में विशेष पाठ बजाता है, वो नाम रूप देश काल विशेष अर्थ में जरूर याद आना चाहिए। लेकिन इसकी स्मृति न होने के कारण, इसकी पहचान नहीं होने के कारण वो एक्यूरेट याद ठहर नहीं सकती, क्योंकि इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो बिंदु को याद करना वो इम्प्रैक्टिकल है, खींच के याद करना पड़ता है, सहज याद नहीं हो सकती, निरंतर याद नहीं हो सकती। लेकिन जब ये पता लग जाए कि वो ज्योति बिंदु किस स्वरूप के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब याद सहज ही टिक सकती है, और सहज होगी तो निरंतर भी होगी। इसलिए बताया कि उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का इतना लव नहीं है। अगर वो पक्की स्मृति आ जाए नाम रूप देश काल गुण और कर्तव्य की, तो पक्का लव जुट जाते। इसलिए बताया किसको दोष तो नहीं है कि लव किसका जुटेगा और किसका नहीं जुटेगा, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। 500 करोड़ मनुष्य आत्मा में हर एक का अपना अपना ड्रामा बना हुआ है। पहले स्मृति किसको आएगी? पहले पहले उसकी पहचान किसको होगी? जिन्होंने कल्प पहले पहचान ली होगी उन्हीं को वह पहचान होगी। माला बनी हुई है यादगार, तो वो 108 माला के मन के जो आत्मा की यादगार बने हुए हैं, नंगी आत्मा बनते हैं, सिर्फ मुखलिंग दिखाए जाते हैं, यानी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में मुख भी दिखाए जाते, शरीर नहीं दिखाया जाता, मुख लेने की यादगार है। तो मुख अर्थात जिसमें मन बुद्धि रूपी आत्मा निवास करती, शरीर रूपी देहवानों वो त्यागने वाली आत्मा है, तो वही आत्मा परमात्मा बाप के नाम रूप देश काल को पहले पहचानती। इसलिए बताया ये भी ड्रामा में नूद है कि किनको उस रूप की स्मृति पहले आवेगी, कौन उस स्वरूप को पहले याद करेंगे और लव में लव पुलिंग में स्थिर हो जाएंगे। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्म का पाठन होता हुआ है, जिन आत्माओं में वो लव पैदा होगा परमात्मा की याद के प्रति, वो कितने जन्म लेने वाली होंगी, 84 जन्म लेने वाली, एक जन्म भी उनका कम नहीं होगा, 84 जन्मों का ऑल राउंड पार्टन हुआ है उन आत्मा। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की वो बीज रूपात्मा है, बीज का कभी नाश नहीं होता। अगर 83 जन्म लेने वाली आत्मा है तो सच रूपी रंगमंच पर एक जन्म का उसके पार्ट का नाश हो गया, तो उसको पार्ट के हिसाब से अविनाशी आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्ट एक जन्म का कम हो गया, आधा उठ पार्ट कहाँ बजाया। तो जो 84 जन्म लेने वाली बीज रूप आत्मा है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है, किसकी नजर में? परमात्मा बाप की नजर। उन आत्माओं में अंतिम जन्म में आकर के कोई दूसरी क्वालिटी रहे या न रहे, लेकिन एक क्वालिटी जरूर होगी, वो कौन सी? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई, भले ये स्टेज बन जाए, निर्गुण बालकों की संस्था ही क्यों न कही जाए, लेकिन रुद्रमाला के मणके जो है वो निर्गुण है। क्यों? कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई काने हैं, कोई कुब्जे हैं और विचित्र पाट बजाने वाले, तो उनमें गुण कहां से आए? तो बाप देवताओं के गुण नहीं देखने के लिए आता है, जानता है ये सारी दुनिया पतितों की है, तो पतित दुनिया में देवात्माएं कहां से आ गई? तो परमात्मा तो जानता है कि दैवी गुण नहीं है, प्योरिटी की पावर नहीं है, तब तो मुझे पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, लेकिन एक गुण उन बच्चों में विशेष जरूर है, जो सारी दुनिया के बीज हैं, जो नंगी स्टेज को धारण कर लेते हैं। कौन सा गुण याद आ रहा है? अव्यक्त वाणी में बताया हुआ है कि तुम बच्चों में और कोई विशेषता हो न हो, एक विशेषता हर एक बच्चे में है, भूल गए, बाप की पहचान की विशेषता तो हर बच्चे में, जो भी 108 आत्मा है परमात्मा बाप के बच्चे बनते हैं, रुद्रमाला के मणके बनते हैं, निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, उनमें बाप की पहचान की विशेषता है। उन बच्चों ने बाप को पहचाना और दूसरों ने बाप को नहीं पहचाना। बड़े बड़े सेठों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मठाधीश और शंकराचार्यों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जो बाप के बच्चे हैं, दुनिया में जिन बच्चों की अंतिम जन्म में आकर के कोई वैल्यू नहीं रहती, दुनिया उनको नीची नजर से देखती है, बाप उन्हीं बच्चों को ऊंची नजर से देखते। तो इतनी छोटी बिंदी, उनमें 84 जन्म का पाठ नुदा हुआ है, तो कितना बंदर है, कैसे आत्मा शरीर लेकर के पाठ बजाती है? अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ गया, हद का पाठ और बेहद का पाठ आत्माओं का कैसे कैसे माना जाए? जो कम जन्म लेने वाले हैं उनका हद का पार्ट हो गया, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका बेहद का पार्ट, तो तुमको भी अर्ध के पाठ का पता पड़ गया। और जो दुनिया वाले हैं उनको बेहद का पाठ क्या होता है और हद का पाठ क्या होता है उनको पता नहीं। कौन सी दुनिया वालों है? ब्राह्मणों की दुनिया वालों को इस बात का पता ही नहीं है कि बेहद के पाठ बजाने वाले 84 जन्म वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, बाप से डायरेक्ट स्नेह का जल लेने वाले कौन कौन बच्चे। लेकिन तुम बच्चों को पता है, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी पहले देह अभिमानी थे, अब बाप को पहचाना है तो आत्माभिमानी बने। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखो। ऐसा क्यों बोला? जरूर इसलिए बोला कि ब्रह्मा के मुख से परमात्मा बाप को याद करने की जो बेसिक नॉलेज दी कि तुम आत्मा बिंदु हो और मैं परमात्मा बिंदु, ये बिंदु की नॉलेज ने बिंदु की याद की शक्ति से आत्मा को सूक्ष्म स्टेज वाला बना दिया। तो जिन्होंने उस जिन बच्चों ने उस बिंदु रूपी स्टेज को विशेष याद किया, देहधारियों को याद नहीं किया, चाहे वो मम्मा बाबा ही क्यों न हो, तो उनकी निराकारी स्टेज, सूक्ष्म स्टेज ज्ञान की गहराइयों में पहुंचने वाले स्वभाव वाली बन जाती है। और ऐसी आत्माएं परमात्मा बाप के रूप को, चाहे वो कितना भी गुह्य से गुह्य रूप क्यों न हो, कितने ही पर्दों में छुपा हुआ रूप क्यों न हो, उसको वो बच्चे पहचान लेते, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है बिंदु को याद करने से। तो बताया कि पहले तुम बच्चे देह अभिमानी और अब तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर गई। तो जब सारी कट आत्मा की उतर जाती है तो तुम डायरेक्ट बाप से जाकर के चिपक जाते हो, जैसे चुंबक मैं सुई जाकर के चिपक जाती, ऐसे तुम्हारी आत्मा की कट उतरने पर तुम भी बाप से जाकर के अटैच हो जाते हो, मन बुद्धि से भी तो शरीर से भी जरूर बाप तो जरूर पहुंचेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई बच्चा ये कहे कि हमको 2 साल से निश्चय हुआ पड़ा और हम बाप से मिले नहीं। बाबा मुरलियों में कहते ये बात हो नहीं सकती कि कोई को 2 साल पहले से निश्चय हो गया और बाप से मिला ही। बाबा कहते जिसको निश्चय हो जाएगा वो 1 सेकंड भी बाप से मिले बगैर रुक नहीं सकता। तो जिनको खींच हो जाती है, कशिश हो जाती है, तो ऐसी आत्माओं की, ऐसी सुइयों की जो कट है वो उतर जाती है, क्योंकि शूटिंग पीरियड चल रहा है। इस शूटिंग पीरियड में हमें उन रामों पर चलना है जहां गिरना और संभलना, यहां चढ़ना भी होता है तो उतरना भी होता है, क्योंकि चारों युगों की शूटिंग होनी है। चारों युगों की शूटिंग में चढ़ती कला उतरती कला दोनों का पार्ट चलता है। परमात्मा बाप को जब पहचाना तो चढ़ती कला होने लग पड़ती, और फिर देहधारियों के संग के रंग में रंगने से उतरती कला भी होने लग पड़ती द्वापर से। द्वापुर माना दो दो मते, तो एक बाप दूसरा न कोई। ये स्थिति में जो बच्चे जितने जाति टिकेंगे, जितना स्वभाव पक्का होगा उतनी जाति पावर बढ़ेगी, उतनी कम उतरती कला में जाएंगे। जैसे बाप 84 जन्म लेने वाला है, ऑलराउंड पार्ट बनाने वाला है, जितनी पावर उस आत्मा में भरी हुई है, वैसे बाप के जो बच्चे होंगे 84 जन्म लेने वाले, उनमें भी विशेष पावर जरूर बढ़ती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी तुमने कितना पलटा खाई है, क्या ये शक्ति चक्र घूमा? तो शक्ति का चक्कर रूपी जो पहिया जब घूमता है तो नीचे की है ऊपर पहुंच जाती और ऊपर की यार नीचे आ जाती, तो ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हारा घूम गया। मन बुद्धि क्षेत्र में जब ये सुदर्शन चक्र घूम गया तो ज्ञान जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे से बिल्कुल उल्टा हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया में ही सारी बातें हमको देखने में नजर आती, कि ज्ञान कैसे उल्टे से पलटा हो गया। नीचे की बात ऊपर, ऊपर की बात नीचे कैसे हो गई। अभी तक समझते थे कि शास्त्र सब झूठे हैं, और अब क्या समझते हैं। एडवांस नॉलेज लेने के बाद ये बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाता है कि शास्त्रों में लिखने वालों ने जो कुछ भी लिखा वो अपना अपना ही चरित्र लिखा है। इसी समय की यादगार है, शास्त्र झूठे नहीं है लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन करने वाले झूठे हो जाते हैं, तो सारी बातें उल्टी हो जाती हैं। तो तुमको वेद के पाठ का पता पड़ गया, अभी तुमने कितना पलटा खाया है। वो भी हर एक की तकदीर पर है कि कौन कितना पलटता है, पूरा पलटता है या थोड़ा पलटता है। कल पहले वाली तकदीर का आप साक्षात्कार हो रहा है, हर एक को होना है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया उस अनुसार दुखी और सुखी, साहूकार और गरीब बनते रहते। बनती तो आत्मा है ना, आत्मा कैसे सुख में आती है फिर आत्मा दुख में भी आती है, तो ये नूद कहां होती है। सुख में आने की, दुख में आने की, अनेक जन्मों की ये नूद कहां होती है। इस ब्राह्मणों की संगमयुग दुनिया में नूद हो रही है हर आत्मा। इस समय हर आत्मा की मुट्ठी में अपनी तकदीर बाप ने दे दी। जो कैसे है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, लेकिन है नंबर वन। तो बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अब अकल बाप सिखलाए रहे। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया में सब ब्राह्मण एक जैसे हैं, नहीं। कोई तमो प्रधान स्टेज में पाठ बजा रहे हैं तो कोई सतो प्रधान स्टेज में भी पाठ बजा रहे हैं। तमो प्रधान स्टेज में पाठ बजाने वाले ब्राह्मण दूसरों को भी दुखी करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, और सतो प्रधान स्टेज में पाठ बजाने वाले ब्राह्मण दूसरों को भी सुख देंगे तो खुद भी सुखी होकर के रहेंगे। दुख देना और लेना ये उनका काम नहीं होगा, उनका काम होगा सुख देना और सुख लेना। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की अब अकल, सुख प्राप्त करने और सुख प्राप्त कराने की ये अकल अब बाप सिखलाए रहे। कल पहले मौखिक सिखलाए गए हैं, कोई नई बात नहीं है। जितना पहले अकल पाया उतना ही अब तुम बच्चे ने अकल पाए रहे हो। दूसरा भी तो अब तुम बच्चे पिछाड़ी तक पहुंचते पहुंचते हरेक की तकदीर को समझ जाएंगे, अपनी ही तकदीर को नहीं समझेंगे, लेकिन हर आत्मा जो तुम्हारे संसर्ग संपर्क में आने वाली है उसकी तकदीर को तुम बच्चे समझ जाओगे। फिर कहेंगे कि कल्प कल्प ऐसे ही हरेक की तकदीर रहेगी जैसी इसने बनाई। जो अच्छा योग युक्त और ज्ञान युक्त बच्चा होगा उसकी पहचान क्या होगी, है? वर्तमान में कैसे पता चले कि ये योग युक्त और ज्ञान युक्त बच्चा है? योगी सो क्या विशेषता होगी उसमें, योगी सो सहयोगी। जो जितना योगी होगा वो बाप को सहयोग किए बगैर रह नहीं सकता, माने सर्विस जरूर करेगा। जिसकी चढ़ती कला होगी तो चढ़ती कला वाला सर्व का भला करने में जरूर लगा रहेगा। अगर सर्व का भला नहीं करता, किसी का भला किसी का बुरा करता है, तो उसकी स्टेज चढ़ती कला की नहीं कही जाएगी। क्योंकि जितना ऊंचा चढ़ा उतना नीचे गिर गया, जितनी सर्विस की उतनी डिसर्विस कर ली, तो बाकी बचा क्या। तो अच्छा बच्चा जो होगा वो योग युक्त होगा और ज्ञान युक्त होगा, वो सर्विस करता रहेगा। सर्विस और या उससे छूट नहीं सकती। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई बच्चे बहुत जल्दी पढ़ाई पढ़ लेते हैं और कोई बच्चे बहुत माथा खपाई करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते, पढ़ाई जैसे पढ़ते ही नहीं। तो यहां भी ऐसे कल पहले माफिक जो जो उन्नति करते हैं वे छिपे नहीं रह सकेंगे। बाबा तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। ये भी तो बच्चों की एक्ट देखते देखते ही समझ जाते कौन ये माने कौन है। ब्रह्मा जब यह कहते हैं या इसे कहते हैं या इसने कहते हैं तो बाजू वाले के लिए कहा। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये वाणी बोली तो बोलने वाला था सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु। इसने जब कहा तो बाजू में बैठने वाली आत्मा है ब्रह्मा की, उसके लिए बोला। लेकिन वो तो बात पास हो गई। ये वाणी का क्लैरिफिकेशन तो अब निकला दिया जा रहा
है। 18 वर्ष के बाद पहला पहला इशू।
सुप्रीम सोल भी टीचर का पार्ट बजाता है तो अब यह है कौन, यह किसकी तरफ इशारा। उसमें तो प्रवेश करके परमात्मा बाप गॉड फादर के रूप में प्रत्यक्ष ही होता है। वो तो बेहद का गॉड फादर हो गया, बेहद का बाप। यह किसकी तरफ इशारा किया, वो तो गए सरी छोड़ दिया है। तो भंडू सातमा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो पुरुषतन था वो वास्तव में प्रैक्टिकल वास्तविक रूप बड़ी माँ का नहीं था, जिसको संसार में ईव और हवा के नाम से मुसलमान में पुकारा जाता है। एडम के साथ ईव और आदम के साथ हवा, जो गायन है आदिदेव के साथ आदिदेवी,